आइए आज हम कम्युनिस्ट मूवमेंट और चियांग काई शेक के बारे में चर्चा करेंगे। कम्युनिस्ट मूवमेंट के अंदर हम सबसे पहले लोकतंत्र शासन की स्थापना का प्रयत्न पर चर्चा करते हैं। यद्यपि कुमिंगतांग और कम्युनिस्ट दलों में किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सका, पर चियांग काई शेक के लिए यह संभव था कि वह चीन में लोकतंत्र शासन की स्थापना के कार्य को कोई महत्व ना दे। जापान के विरुद्ध युद्ध की परिस्थितियों के कारण चीन की राष्ट्रीय सरकार का शासन सूत्र पूर्ण रूप से चियांग काई शेक के हाथों में आ गया था। एक एकाधिपति और डिक्टेटर के रूप में वह देश का शासन करता था और संपूर्ण राज्य शक्ति उसी में केंद्रित थी। 1936 के बाद चीन में ना कोई निर्वाचन हुए थे, ना किसी अन्य प्रकार से लोकमत के अनुसार शासन करने का प्रयास किया गया था। युद्ध के समय चियांग काई शेक की ओर से बहुधा यह घोषणा की जाती थी कि युद्ध की समाप्ति पर जब शांति स्थापित हो जाएगी तो चीन में पुनः लोकतंत्र शासन कायम किया जाएगा और सरकार का संगठन लोकमत के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए अब युद्ध की समाप्ति के लगभग एक साल बाद नवंबर 1946 में चियांग काई शेक के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय महासभा का संगठन किया गया। इसके सदस्यों की संख्या 2150 थी। इनमें से 950 सदस्य वे थे जिनका निर्वाचन अब से 10 साल पूर्व 1936 में हुआ था। इनके अतिरिक्त अन्य सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित न होकर राज्य द्वारा मनोनीत किए गए थे। इन्हें नियुक्त करते हुए सरकार की ओर से यह प्रयत्न किया गया था कि जहां राष्ट्रीय महासभा में विविध राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त हो, वहां चीन के प्रमुख व्यक्ति भी उसकी सदस्यता पा सके। 25 दिसंबर 1946 को राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन आरंभ हुआ। कम्युनिस्ट सदस्य इस अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए, पर उनकी अनुपस्थिति की कोई परवाह ना कर राष्ट्रीय महासभा ने चीन के लिए नए शासन विधान का निर्माण कर दिया और यह व्यवस्था की कि नया संविधान 25 दिसंबर 1947 से लागू कर दिया जाए। चीन के इस नए लोकतंत्र शासन विधान पर यह प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस क्रिया में परिणित करने के लिए चियांग काई शेक और उसके साथियों को अवसर ही नहीं मिल सका। कम्युनिस्ट लोग राष्ट्रीय महासभा में सम्मिलित नहीं हुए थे और शीघ्र ही उन्होंने चीन के बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कुमिंगतांग दल की संपूर्ण शक्ति कम्युनिस्ट लोगों का मुकाबला करने में ही लग गई थी और उन्हें इस बात का अवकाश नहीं मिला कि वे राष्ट्रीय महासभा द्वारा तैयार किए गए शासन विधान के अनुसार चीन में लोकतंत्र शासन का विकास कर सके। यहाँ इतना बताना पर्याप्त है कि इस शासन विधान का निर्माण डॉक्टर सन्यात सेन के सिद्धांतों और आदर्शों को ध्यान में रखकर किया गया था और राज्य शक्ति के उपयोग का अधिकार राज्य के 5 विभागों को युवाओं को दिया गया था। ये युवान निम्नलिखित थे: व्यवस्थापक युवान, शासन युवान, न्याय युवान, परीक्षा युवान और नियंत्रण युवान। डॉक्टर सन्यात सेन के शासन संबंधी विचार आप जानते हैं। जनवरी 1948 में नए शासन विधान के अनुसार व्यवस्थापन युवान यानी कि पार्लियामेंट का निर्वाचन हुआ। चियांग काई शेक को चीन की रिपब्लिक का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया और उपराष्ट्रपति के पद पर जनरल ली तुशुंग जेन को चुना गया। जनरल ली कट्टर सुधारवादी थे और चियांग काई शेक से उनका प्रबल मतभेद था। चियांग काई शेक के विरोध के बावजूद भी उनका उपराष्ट्रपति निर्वाचित होना इस बात का प्रमाण है कि चीन में इस समय भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो चियांग काई शेक का अंधानुसरण करने को तैयार नहीं थे। यदि इस समय चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकती और कुमिंगतांग और कम्युनिस्ट दलों के लोग आपस में समझौता करके लोकतंत्र शासन के विकास के लिए प्रयास करते तो निसंदेह चीन लोकतंत्र के मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर हो सकता, पर यह संभव नहीं था कि इन दो दलों में परस्पर समझौता हो सके। जिस समय चीन की केंद्रीय सरकार दिसंबर 1946 के शासन विधान के अनुसार विविध युवाओं के संगठन में तत्पर थी, तभी कम्युनिस्ट सेनाएं निरंतर आगे बढ़ रही थी और चीन के बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न थी। जुलाई 1949 तक चीन के बड़े भाग पर कम्युनिस्ट लोगों का शासन कायम हो गया था और डॉक्टर सन्यात सेन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार निमित नए शासन विधान को क्रिया में प्रणीत होने का कोई अवसर ही नहीं रह गया था। आइए अब हम कम्युनिस्ट दल के उत्कर्ष पर चर्चा करें। अमेरिका के प्रयत्न के बावजूद भी क्यूमिंगतांग और कम्युनिस्ट दलों में समझौता नहीं हो सका था। जब तक जापान के साथ युद्ध जारी रहा, इन दोनों दलों के गृह कलह ने उग्र रूप धारण नहीं किया, पर जापान के आत्मसमर्पण करते ही जब उत्तरी और पूर्वी चीन पर पुनः अधिकार स्थापित करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो चुंग किंग और येनान की सरकारों के पारस्परिक विरोध ने बहुत गंभीर रूप धारण कर लिया। कुछ समय बाद इन दोनों दलों की सेनाओं में गृह युद्ध आरंभ हो गया और अंत में इस युद्ध में कम्युनिस्टों की विजय हुई। 1939 से 45 के महायुद्ध में रूस मित्र राज्यों के पक्ष में था और जर्मनी की नाजी शक्ति को परास्त करने में उसका कृतित्व अत्यंत महत्वपूर्ण था। जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में रूस ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाई हुई थी, इसलिए उसने जापान के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित करना उचित नहीं समझा था। अप्रैल 1941 में रूस और जापान में एक संधि हुई थी जिसके अनुसार दोनों राज्यों ने तटस्थता की नीति का अनुसरण करना स्वीकार किया था। यह संधि 5 साल के लिए की गई थी और दोनों राज्य को यह अधिकार था कि संधि की अवधि के समाप्त होने से 1 साल पहले वे इस संधि को समाप्त करने का नोटिस दे सकें। ब्रिटेन और अमेरिका चाहते थे कि रूस जापान के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दे ताकि जापान को परास्त कर सकना उनके लिए सुगम और सुलभ हो जाए, पर रूस यह भली भांति जानता था कि उत्तर पूर्वी चीन में जापान की शक्तिशाली क्वांगतुंग सेना अक्षुण्ण रूप से विद्यमान है। और यदि रूस जापान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाएगा तो यह सेना पूर्वी साइबेरिया पर सुगमता से कब्जे में चला जाएगा। रूस को एक अच्छी बड़ी सेना जापान का सामना करने के लिए साइबेरिया भेजनी पड़ेगी और इसका परिणाम केवल यह होगा कि वह जर्मनी के विरुद्ध अपने संपूर्ण सैन्य शक्ति का उपयोग नहीं कर सकेगा। फरवरी 1941 में याल्टा नामक स्थान पर मित्र राज्यों के प्रमुख नेताओं की एक कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें रूस ने यह स्वीकार किया कि जब जर्मनी महायुद्ध में परास्त हो जाएगा तो उसके 2 या 3 महीने बाद रूस जापान के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर देगा ताकि जापान को परास्त करने में वह भी सहायक हो सके। रूस समझता था कि जापान के विरुद्ध लड़ाई शुरू करने के लिए इतने समय की आवश्यकता होगी क्योंकि यूरोप से हजारों मील दूर पूर्वी साइबेरिया में अपनी सेनाओं और युद्ध सामग्री को प्रचुर परिमाण में पहुंचाने के लिए 2 या 3 महीने का समय अवश्य लग जाएगा। याल्टा कॉन्फ्रेंस में ही ब्रिटेन अमेरिका ने रूस के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार उन्होंने यह स्वीकार किया था कि जापान की पराजय के बाद पूर्वी एशिया के संबंध में नई व्यवस्था करते हुए रूस की निम्नलिखित मांगों को स्वीकार किया जाएगा। रूस की पहली मांग थी मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक, जिसमें समाजवादी व्यवस्था कायम थी, को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकृत किया जाए। रूस की दूसरी शर्त थी 1904 और 5 के रूस जापान युद्ध के परिणाम स्वरूप रूस से जो प्रदेश और प्रभाव क्षेत्र जापान ने प्राप्त किए थे वे रूस को पुनः प्रदान कर दिए जाएं। तीसरी शर्त थी सखालीन द्वीप का दक्षिणी भाग और उसके समीपवर्ती द्वीप रूस को पुनः प्राप्त हो। चौथी शर्त थी पोर्ट आर्थर रूस को पट्टे पर दे दिया जाए ताकि वह वहां अपनी जल शक्ति का अड्डा बना सके। रूस की पांचवी शर्त थी मंचूरिया पर चीनी सरकार का अधिकार हो, पर उसकी 2 प्रमुख रेलवे लाइनों का संचालन एक ऐसी कंपनी द्वारा किया जाए जिस पर चीन और रूस दोनों का सम्मिलित आधिपत्य हो। याल्टा कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन और अमेरिका के साथ उपयुक्त समझौता करके रूस ने यह तय कर लिया था कि जर्मनी की पराजय के कुछ माह बाद वह भी जापान के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर देगा। 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया और उसके ठीक 3 महीने बाद 8 अगस्त 1945 को रूस ने जापान के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। रूस की सेनाओं ने उत्तर की ओर से मंचूरिया में प्रवेश किया। कुछ दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया और रूस को अधिक युद्ध की आवश्यकता नहीं हुई। पर जापान के साथ सामयिक संधि 2 सितंबर 1945 से पूर्व संपन्न नहीं की जा सकी। इसका परिणाम यह हुआ कि 8 अगस्त से 2 सितंबर तक लगभग 3 सप्ताह तक रूसी सेनाएं जापान द्वारा अधिकृत प्रदेशों में निरंतर आगे बढ़ती गई। इस अवसर से लाभ उठाकर रूस ने संपूर्ण मंचूरिया पर अपना कब्जा कायम कर लिया और उसकी एक अन्य सेना कोरिया में प्रविष्ट हो गई। 2 सितंबर तक उसने संपूर्ण उत्तरी कोरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 3 सप्ताह के थोड़े से काल में मंचूरिया और उत्तरी कोरिया के सुविस्तृत प्रदेश रूसी कम्युनिस्टों के अधिकार में आ गए। यद्यपि रूस के इस आधिपत्य का चीन के कम्युनिस्टों के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था, पर हमने इसका इतने विशद रूप में उल्लेख इसलिए किया क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट दल के उत्कर्ष में इससे बहुत अधिक सहायता मिलती है। 15 अगस्त 1945, जापान ने आत्मसमर्पण किया था। यद्यपि महायुद्ध में जापान परास्त हो गया था, पर मंचूरिया और पूर्वी चीन पर उसका आधिपत्य अभी अविकल रूप से विद्यमान था। मंचूरिया और कोरिया में रूसी सेनाएं निरंतर आगे बढ़ रही थी, पर मंचुकुओ और नानकिंग की सरकारें अभी पूर्ववत कायम थी। जापान के आत्मसमर्पण का यह परिणाम अवश्यंभावी था कि मंचूरिया और पूर्वी चीन से उन सरकारों का अंत हो जाता जो कि जापान को अपना संरक्षक, मित्र एवं सहयोगी मानती थी। साथ ही यह भी आवश्यक था कि इन प्रदेशों में जो जापानी सेनाएं विद्यमान थी वे हथियार डाल दें और मित्र राज्यों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दें। मंचूरिया और उत्तरी कोरिया में रूसी सेनाएं प्रविष्ट हो गई थी और रूस ने वहां अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। पर प्रश्न यह था कि पूर्वी चीन पर अब किसका अधिकार हो और वहां की जापानी सेनाएं किसके सम्मुख आत्मसमर्पण करें। मित्र राज्यों ने इस बात का फैसला कर लिया था कि पूर्वी चीन पर चीन की स्वतंत्र सरकार की सेनाओं का अधिकार कायम होगा, पर चीन की स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार की सेनाएं 2 प्रकार की थी। पहली सेना थी किमिंगतोंग की और दूसरी सेना थी कम्युनिस्टों की। इन दोनों सेनाओं में किसी भी प्रकार का समझौता अब तक नहीं हो सका था। इस दशा में यह स्वाभाविक था कि ये दोनों सेनाएं पूर्वी चीन के अधिक से अधिक प्रदेश पर अपना कब्जा कायम करने का प्रयत्न करें। कम्युनिस्ट सेनाएं अधिक व्यवस्थित और संगठित थी। उत्तर पश्चिमी चीन पर जो इनका अधिकार था ही साथ ही जापान द्वारा अधिकृत चीन के भी अनेक स्थानों पर एक कम्युनिस्ट सेनाएं गुरिल्ला पद्धति से युद्ध में व्याप्त थी। इस दशा में उनके लिए यह अधिक सुगम था कि वे पूर्वी चीन के बड़े भाग पर अपना कब्जा कायम कर लें। पर चियांग काईशेक इस बात को नहीं सह सकता था। अमेरिकन लोग भी यह नहीं चाहते थे कि जापान को परास्त कर पूर्वी चीन के जिन प्रदेशों को उसकी अधीनता से स्वतंत्र कराया गया है उन पर अब कम्युनिस्टों का आधिपत्य स्थापित हो जाए। अतः उन्होंने इस समय चियांग काईशेक की दिल खोल कर सहायता की। बहुत बड़ी संख्या में मोटरगाड़ियाँ, ट्रक, हवाई जहाज आदि चुंगकिंग सरकार को प्रदान किए गए ताकि किमिंगतांग दल की सेनाएं तेजी के साथ पूर्वी चीन पहुंच सके और कम्युनिस्टों से पहले ही उस स्थान पर अपना कब्जा कायम कर ले। इस अवस्था में यह स्वाभाविक था कि चुंगकिंग सरकार और येनान सरकार में फिर से गृह युद्ध आरंभ हो, क्योंकि कम्युनिस्ट लोग यह नहीं चाहते थे कि चियांग काईशेक संपूर्ण पूर्वी चीन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले। परिणाम यह हुआ कि सितंबर 1945 में कुमिंगतांग और कम्युनिस्ट सरकारों में लड़ाई शुरू हो गई और जापान की पराजय के बाद भी चीन में शांति की स्थापना नहीं हो सकी। अमेरिका नहीं चाहता था कि चीन में गृह युद्ध जारी रहे, इसलिए उसने दिसंबर 1945 में जनरल मार्शल को इस उद्देश्य से चीन भेजा था ताकि वह चीन के इन दोनों दलों में समझौता करा के वहां लोकतंत्र शासन की स्थापना का उद्योग करे। जनरल मार्शल को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं हो सकी, पर कुमिंगतांग और कम्युनिस्ट दलों में समझौता हो सकना सुगम बात नहीं थी। नवंबर 1946 में चियांग काई शेक ने देश के लिए नया शासन विधान का निर्माण करने के प्रायोजन से जिस राष्ट्रीय महासभा का आयोजन किया था, कम्युनिस्ट दल ने उसका बहिष्कार कर दिया था। इस बीच में कम्युनिस्ट सेना उत्तरी और पूर्वी चीन के अनेक प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुकी थी। कुछ मास पूर्व 1946 के शुरू में रूसी सेनाओं ने मंचूरिया और उत्तरी कोरिया को खाली कर दिया था और इन प्रदेशों पर भी चीन के कम्युनिस्टों ने अपना कब्जा कायम कर लिया था। इस प्रकार चीन के अच्छे बड़े भाग पर चीनी कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया था। अब चियांग काई से चीन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए दो ही उपायों पर अवलंबन कर सकता था। पहला उपाय, या तो वह कम्युनिस्टों के साथ समझौता करके इस बात के लिए तैयार हो कि चीन में एक ऐसी लोकतंत्र सरकार की स्थापना की जाए जिसका निर्माण लोकमत के अनुसार हो और कुमिंगतांग और कम्युनिस्ट व अन्य सब राजनीतिक दलों को एक दृष्टि से देखे। दूसरा उपाय, या वह कम्युनिस्टों को युद्ध में परास्त कर उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों को अपने कब्जे में लाए। 1947 तक चीन में समझौते के लिए जो भी प्रयास हुए वे असफल रहे थे, पर 1948 में भी ये प्रयास जारी रहे पर सफल नहीं हो सके। इस समय चीन दो भागों में विभक्त था, कुछ प्रदेशों पर कम्युनिस्टों का कब्जा था और कुछ पर कुमिंगतांग दल का। 1948 के शुरू में चीन में जिस लोकतंत्र शासन की स्थापना का उद्योग हुआ था उसका संबंध केवल कुमिंगतांग दल द्वारा अधिकृत चीन के साथ ही था। शेष चीन में कम्युनिस्ट लोग समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में तत्पर थे। 1949 के आरंभ में एक बार फिर दोनों दलों में समझौते का प्रयास हुआ। 14 जनवरी 1949 को कम्युनिस्ट दल की ओर से समझौते के निम्नलिखित शर्तें पेश की गई। पहली शर्त थी चियांग काई शेक और ली तुसुंग जेन को अपने पदों से हटा दिया जाए। दूसरी शर्त थी कुमिंगतांग और कम्युनिस्ट सरकार एक साथ अपनी सेनाओं को लड़ाई बंद करने का आदेश दे। तीसरी शर्त थी देश के लिए एक नया शासन विधान बनाया जाए जिसे बनाने का कार्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपा जाए। चौथी बात थी जब तक नया शासन विधान तैयार ना हो शासन कार्य का संचालन करने के लिए एक ऐसी सरकार का संगठन किया जाए जिसमें सब प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, सेना का नए सिरे से संगठन किया जाए। छठी बात थी युद्ध के लिए जिन चीनी नेताओं को दोषी पाया जाए उन्हें दंड देने की व्यवस्था की जाए। यह स्पष्ट है कि महासेनापति चियांग काई शेक इन शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता था, पर इस समय चीन में उसकी स्थिति बहुत हीन हो चुकी थी। कम्युनिस्टों के विरुद्ध लड़ाई के लिए वह अमेरिका से यथास्थ सहायता प्राप्त कर सकने में समर्थ नहीं हुआ था। इस समय अमेरिका भी इस स्थिति में नहीं था कि चीन के गृह युद्ध में एक पक्ष की खुले रूप से सहायता कर सके। यदि अमेरिका कुमिंगतांग दल की सहायता करता तो कम्युनिस्ट लोगों को रूस से सहायता प्राप्त करने का पूरा भरोसा था। इस दशा में अमेरिका ने प्रायः तटस्थता की नीति का अनुसरण किया और इस कारण चियांग काईशेक की राजनीतिक स्थिति बहुत कुछ दवाडोल हो गई। 12 जनवरी 1949 को उसने अपनी सरकार का सब कार्यभार उपराष्ट्रपति ली तुसुंग जेन को सौंप दिया। यद्यपि राष्ट्रपति के पद पर अब भी चियांग काईशेक कायम रहा, पर नॉन किंग सरकार का संचालन जनरल ली के हाथों में आ गया। इस समय नॉन किंग सरकार का प्रधानमंत्री सन फो था। उसने कम्युनिस्टों के साथ समझौते की बातचीत को जारी रखा। वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। 19 अप्रैल 1949 को समझौते की बातचीत अंतिम रूप से समाप्त हो गई और कम्युनिस्टों और कुमिंगतोंग सरकार की सेनाओं में बकायदा युद्ध आरंभ हो गया। उत्तरी चीन के सब प्रदेशों पर कम्युनिस्टों का पहले ही कब्जा था। जनवरी 1949 में समझौते की बातचीत शुरू होने से पहले कम्युनिस्ट लोग टिन तिशिन और पेकिंग पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। समझौते की बातचीत के असफल हो जाने पर अप्रैल 1949 में कम्युनिस्ट सेनाओं ने यांगत्से नदी को पार कर लिया और नानकिंग और संघाई कम्युनिस्टों के अधिकार में चले गए। कुछ समय बाद कम्युनिस्ट सेनाओं ने हैंको को भी जीत लिया और अक्टूबर 1949 में दक्षिणी चीन के प्रसिद्ध नगर कैंटर पर भी उनका प्रभाव स्थापित हो गया। 17 सितंबर 1949 को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के परराष्ट्र विभागों ने यह स्वीकृत कर लिया कि अब चीन में कुमिंगतोंग दल की शक्ति व सत्ता का पूर्ण रूप से ह्रास हो गया है। इस दल का चीन में कुछ भी प्रभाव नहीं रहा है और इसका कोई ऐसा व्यवस्थित संगठन नहीं है जिसे पाश्चात्य राज्य सहायता दे सके। वस्तुतः महायुद्ध के समय में ही अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों से अनेक राजनीतिक यह अनुभव करने लगे थे कि कुमिंगतोंग दल के नेताओं में बहुत अधिक विकृति आ चुकी है और वे अपनी राजशक्ति का उपयोग देश के हित और कल्याण के लिए ना करके अपने स्वार्थ साधन के लिए कर रहे हैं। चीन की जनता भी उनके पक्ष में नहीं थी। इस प्रकार विपरीत कम्युनिस्ट लोग जहां सुव्यवस्थित और सुसंगठित थे, वहां साथ ही देश के हित साधन में भी तत्पर थे। इस दशा में यदि उन्हें कुमिंगतोंग सरकार को परास्त कर सकने में असाधारण रूप से सफलता प्राप्त हुई हो तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। नवंबर 1949 तक यह दशा आ गई थी कि कुमिंगतोंग सरकार की अधीनता में केवल निम्न प्रदेश रह गए थे। पहला प्रदेश सचजे चुआन का प्रांत, जिसकी राजधानी चुंगकिंग थी। दूसरा प्रदेश दक्षिणी पूर्वी चीन के क्वांगसी प्रांत का कुछ भाग। तीसरा प्रदेश फार्मूसा द्वीप और चौथा प्रदेश था हैनान द्वीप। ये चार प्रदेश जहां कुमिंगतोंग सरकार की अधीनता में थे, वहां पश्चिमी चीन के अनेक प्रदेशों पर एक बार फिर विविध सिपह सलारों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चीन के गृहकला की दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था कि विविध शक्तिशाली सेनापति अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासकों के समान आचरण करने लगे। इस दशा में कम्युनिस्ट सरकार के सम्मुख मुख्य कार्य यह था कि इन सब प्रदेशों को जीतकर संपूर्ण चीन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जाए। इस कार्य में उन्हें विशेष कठिनता का सामना नहीं करना पड़ा। 1949 के अंत से पूर्व ही कम्युनिस्ट सेनाओं ने अभ्यंतर मंगोलिया के ननिंग सआ प्रदेश को जीत लिया और मार्च 1950 तक उन्होंने सब स्वतंत्र सिपह सलारों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया। इसी प्रकार कम्युनिस्ट सेनाओं ने सजे चुआन और क्वांगसी में विद्यमान कुमिंगतोंग सेनाओं के विरुद्ध भी संघर्ष को जारी रखा। मार्च 1950 तक यह स्थिति आ गई थी कि कुमिंगतोंग दल का प्रभुत्व केवल फार्मूसा और हैनान के द्वीपों तक ही सीमित रह गया था। चीन के विशाल प्रदेशों में कोई भी ऐसा नहीं रहा जो चियांग काईशेक या उसके क्विमिंगतोंग दल के अधिकार में हो। बाद में हैनान पर भी कम्युनिस्ट सेनाओं ने कब्जा कर लिया। इस समय केवल फार्मूसा द्वीप ही एकमात्र ऐसा महत्वपूर्ण प्रदेश है जो चियांग काईशेक या क्विमिंगतोंग दल के आधिपत्य में है। चीन में राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के कार्य में कम्युनिस्ट दल को असाधारण रूप से सफलता प्राप्त हुई है। संपूर्ण चीन को अपने अधिकार में लाकर कम्युनिस्ट लोगों ने यहाँ किस ढंग से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था की, यह आप आगे समझेंगे। पर यहाँ यह उपयोगी होगा कि हम कम्युनिस्ट दल की सफलता के कारणों पर संयुक्त और संक्षिप्त रूप से बात करें। आइए, जापान की पराजय के बाद चीन की राज्य शक्ति कम्युनिस्ट लोगों के हाथों में आ गई थी और उसके मुख्य कारण जो इस प्रकार थे उस पर हम चर्चा करें। पहला कारण था कम्युनिस्ट लोगों में उग्र देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना विद्यमान थी। चीन में जापान का प्रभाव जिस ढंग से बढ़ रहा था वे उसके प्रबल विरोधी थे। वे चाहते थे कि चीन के सब राजनीतिक दल आपस के मतभेदों को भुलाकर सम्मिलित रूप से जापान का मुकाबला करें। इस कारण चीन की जनता भी उनके पक्ष में थी। चियांग काईशेक और उसके साथी जापान के विरुद्ध युद्ध की तुलना में चीन में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने को अधिक महत्व देते थे। इसीलिए वे पाश्चात्य देशों से प्राप्त होने वाली सहायता का उपयोग जापान के विरुद्ध ना करके कम्युनिस्टों के खिलाफ करते थे। चीन की जनता को यह बात पसंद नहीं थी। दूसरा कारण है महायुद्ध के समय जो प्रदेश येनान की कम्युनिस्ट सरकार के हाथों में थे उनकी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बहुत संतोषजनक थी। कम्युनिस्ट लोग इन प्रदेशों का युद्ध के लिए शोषण ना करके इसकी उन्नति में संलग्न थे। इसके विपरीत चुंग किंग की क्विमिंगतोंग सरकार द्वारा शासित प्रदेशों की आर्थिक दशा बहुत ही अस्त व्यस्त थी। कीमतें वहां इतनी अधिक बढ़ गई थी कि सर्वसाधारण जनता के लिए अपना निर्वाह भी कर सकना असंभव हो गया था। तीसरा प्रमुख कारण था कम्युनिस्ट सरकार का जनता के साथ घनिष्ठ संबंध था। वह अपनी शक्ति के लिए जनता की सद्भावना व सहयोग पर निर्भर करती थी। इसके विपरीत क्विमिंगतोंग दल के नेता सर्वसाधारण जनता की सर्वथा उपेक्षा कर अपने व्यक्तिक उत्कर्ष के लिए तत्पर रहते थे। यह है चीन में कम्युनिस्ट दल के उत्कर्ष की पूरी जानकारी। हम चियांग काईशेक के प्रभाव और उसके चीन की राजनीति में महत्व के बारे में चर्चा अगली परिचर्चा में जारी रखेंगे।